नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दे दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के 4 प्रमुख डिवीजनों में 1,600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी सारागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। इस खंड पर यात्री रेलगाड़ियों के साथ ही गेहूं, मक्का, गिट्टी, उबले चावल, सीमेंट, उर्वरक, चावल, नमक, रेत, पत्थर और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई होती है। भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचा लिया है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पख्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि पाकिस्तान से अफगान क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की जानी चाहिए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।